نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير جزء 30 part 2 ہے اما يتساءلون پچھلے سیشن میں ہم نے پہلا حاف کیا تھا سورة نبا جس کی 40 آیات ہیں اور سورت غاشیہ جو کہ 26 آیات ہیں. سارے اس حصے کا اگر خلاصہ چند جملوں میں کر لیں, قیامت کا وقت طے شدہ ہے, کسی کے کہنے سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے, کرو کیا تیاری. اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک شخص نے سوال کیا تھا, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ تو نے تیار کیا کیا ہے. کوئی خاتون اپنے شوہر سے پوچھے کہ مہمان کب پہنچ رہے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے کھانا تیار کر لیا. اصل چیز تیاری ہے, اور بار بار کسی چیز کا پوچھنا یہ کب ہوگی, کب شروع ہوگا, کیا ہوگا, یہ نان سینس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کے لیے تیار ہیں تو آپ اور اچھا تیار ہو جائیے, لیکن بعض دفعہ جو لوگ کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو ان کا پھر حال یہی ہوتا ہے. مکہ والے بالکل اسی حال سے بے حال تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت اور اپنی باقی زندگی جو ہماری رہ گئی ہے اس میں ہم ایک گول آج سیکھ کر جائیں گے کہ میں زندگی میں دنیا میں کیوں جی رہی ہوں, اس لیے کہ میں قیامت کے بعد کے لیے تیاری کر لوں. قیامت تو آ ہی جائے گی, لیکن جو اس سے بھی بڑا ہنگامہ ہے وہ کیا ہے کہ جزا اور سزا ہو کے رہے گی. قیامت بھی آ جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن یہ جو انسان نے اپنے اعمال کے اجر یا پھر ان کی سزا لینی ہے, یہی چیز بندے کو فکر لگاتی ہے, اور اللہ کرے کہ ہمیں لگ جائے. پھر ہم نے فرسٹ ہاف میں کافی صورتیں پڑھی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا آنکھوں دیکھا حال تھا. کبھی وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت ہے تو کبھی اِذَا السَّمَاءُ انفطرت ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے, سینس آف امیجینیشن, اس کے ساتھ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم اپنے تصور کی آنکھ سے آج ہی دیکھ لو تاکہ جب کل تم دیکھو تو تمہیں زیادہ حیرت نہ ہو. میں اکثر سوچتی بھی ہوں, قرآن کی آیت میرے ذہن میں اس وقت, کہ کافر اس دن ہکا بکا رہ جائے گا, ان ایکسپیکٹڈ تھنگ ہوگی اس کے لیے. دیکھیے, چوٹ تو خری کی بری ہوتی ہے, لیکن جو اچانک چوٹ لگتی ہے نا اس کی درد بہت ہوتی ہے. آپریشن کرنے سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ اس کو بہت سے نشتر لگنے ہیں تو بے ہوش کر لیتے ہیں, کیوں کہ مریض کو درد کم ہو. کئی دفعہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے تیار تھے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا پاؤں کاٹنا پڑے اور وہ ہوش میں بھی ہو, تو بس اسی کو ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے لیے تیاری کرنا یہ اسلام کا اتنا خوبصورت تحفہ ہے ہمارے اوپر, کہ ہم باقی نعمتوں پہ شکر ادا کریں نہ کریں, اس پہ شکر کر لیجئے کہ الحمدللہ یا اللہ مالک یوم الدین. اور اللہ کے نبی کو ایک بہت بڑا استاد سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھیے, اگر اللہ کے نبی یہ خبریں ہمیں نہ دیتے تو لوگ تو ہر کچھ عرصے کے بعد نئی سے نئی بات چھوڑیں گے, 2010 میں قیامت آ رہی, فلاں میں آ رہی, دنیا جا رہی, یہ سیارہ ٹوٹ رہا, وہ ہو رہا. آج بھی میں نے کئی جگہ رستوں میں تبلیغ یا بات چیت کے دوران کبھی پوچھا نا, بٹ یو تھنک, دو چار سوالوں کے بعد اگلا سوال کہ آپ کا کیا خیال ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. موسٹلی نان مسلمز یہی سوال کے جواب میں دیتے ہیں آئی ڈونٹ نو, باقی باتوں کا جواب بڑا اچھا اچھا دے رہے ہوتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد کے بارے میں امبیگٹی ہے اور اس کے بارے میں دلوں میں ڈاؤٹس ہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان کر دیا. پھر اللہ کی قدرت کا اظہار, کوئی روک سکتا ہو اور نہ روکے, سوچیے کیا ہوتا ہے, کوئی کام کر سکتا ہے اور وہ نہ کرے, اور آپ کو بتا کہ صرف وہی کر سکتا ہے, آپ سوچئے آپ اس کے کتنے زیادہ منتظر ہوں گے, کتنی اللہ کی آپ کو مجھے ضرورت ہے زندگی کے ہر معاملے میں, ہر کام میں, ہر چیز کو دیکھنے میں. تو آج کے پارے کے حصے کو ذرا سا تھوڑا سا آپ کے ساتھ گو تھرو کر کے پارے کے ترجمے پہ چلیں گے, ساتھ ہی ساتھ باقی چیزوں کو بھی لیتے رہیں گے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حصے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کی ایک بھی آیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے پاروں میں اتنا کچھ مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اب تو بس وہی بات ہے کہ استفتح قلبک ولو افتوک. حضرت علی غالباً کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت نہ بھی آئے, بالفرض قیامت نہ بھی آئے, بلکہ کسی نے پوچھا तुम मुसलमान अजीब हो, खाम खाए कंध देखी, आखिरत, सेकंड वॉर, दूसरी दुनिया, तुम अपनी दुनिया को खराब करे बैठे हो। देखो हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था, और आपको मैं कहूंगी और आप मुझे कहिए। कहने लगे कि मेरे भाई बिलफर्स, तुम्हारी बात ठीक है, क्यामत नहीं आनी। तो क्या हुआ, मैं जो कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो उससे किसी का फायदा हो जाता है, सदका देता हूँ तो किसी गरीब की मदद हो जाती है, मैं कोई इबादत करता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। इट्स ओके ना मिले, जो काम को एंजॉय कर रहा हो तो उसको फिर मिले ना मिले, वो कहते इट्स फाइन। लेकिन तुम एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर मेरा नजरिया ठीक हुआ और क्यामत आ गई तो तुम क्या करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो आज के हमारे इस पारे का थीम है जलजलाए क्यामत। असल मसला मसलाए आखरत है। आप और मैं इस दुनिया में इस वक्त कितने मसाइल का शिकार है, कि आज आपने कल तक ये सोचना है मुझे गम क्या है, मेरे क्या गम है, क्या दुख है। एक बाप अपने बच्चों को लेकर जंगल में जाता है, बाग में चला गया, चलो थोड़ा सैर कर रहा है, वहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, कहीं चूहे फिर रहे हैं, कहीं चींटियां हैं। अब उसको गम क्या है, कोई चींटी मेरे बच्चे के पाँव पे ना आ जाए, कोई चूंटा मेरे बच्चे के पाँव को ना काट ले, कहीं से चूहा ना आ जाए। इतने में दूर से उसको भेड़िए की आवाज आए गुर्राने की, और वो आवाज के साथ साथ तेजी से उसकी तरफ भाग रहा है। आप मुझे बताइए, उस बाप को वो चींटियां याद रहेंगी, चूहे याद रहेंगे, चींटे याद रहेंगे, इवन कॉकरोच भी नहीं याद रहेंगे, उसको पूरा बाग भेड़िया दिखेगा, उसके मुंह से चीख निकलेगी और वो क्या कहेगा, बचाओ अपने आप को भेड़िए से। और भेड़िए के वो भयानक चेहरे को देखने के बाद उन सारी चीजों को भूल जाएगा जिनको वो बहुत बड़ा मसला समझ रहा था। बस लिख लें, मैं और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में अपने बच्चों के गम, उनकी शादियां, उनके रिश्ते, उनकी जॉब, उनकी सेहत, उसकी पढ़ाई, 101 मसला सोचिए, क्योंकि इंसान को अपना गम नहीं इतना चुभता, औलाद का गम बहुत चुभता है। शौहर बीमार हो तो आपको अपनी बीमारी से ज्यादा तकलीफ होती है। हम अपने प्यारों की बीमारी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज आपको इस वक्त बैठकर खुद से एक सवाल करना है, मुझे अपने भाइयों के किन मसलों का गम है, मुझे अपनी बहनों की किस परेशानी ने सताया हुआ है, मेरे माँ बाप का क्या मसला है, मेरे शौहर का, मेरे ससुराल का, और फिर उसके ऊपर लिखिए इन सब का इलाज, क्या आप उनकी और अपनी आखिरत की फिक्र करें। आखिरत के भेड़िए के सामने दुनिया के कीड़े मकोड़े नजर नहीं आते। जिन मसलों पे माएं अपने आप को रोग लगाती हैं और शुगर हो जाती है माँ को, आप सब इस वक्त सोचें कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का सबसे बड़ा मसला क्या है। सारा कुछ भी आपके बच्चों को मिल गया ना, तो याद रखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता उनकी आखिरत बिगड़ गई तो फायदा नहीं है। अबू हुरैरा वाली बात के मुझे तो हर वक्त तीन बातों का गम लगा रहता है, कि आज नेकियां कर रहा हूँ, कल क्या कर रहा हूँगा, मौत किस हाल पे आएगी, और दूसरी बात यह है कि मैं उलसरात से खैर से गुजर जाऊंगा। और उससे भी बढ़कर एक और बात है कि जब नामे अमाल बटेंगे तो मुझे दाएं में मिलेगा कि बाएं में, राइट और लेफ्ट। कहते हैं अगर मैं इन तीन जगहों से कामयाबी के साथ गुजर गया ना, तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहें कि बुरा, और अगर मैं इनमें से किसी एक मोड़ पे रोक लिया गया तो दुनिया के हर बंदे को हक पहुंचता है कि वो मेरी बुराई करे। कि कैसा अबू हुरैरा, देखो देखो जहन्नुम की आग से नहीं बच सका। तो आपने, मैंने अपने ऊपर इसको लेके महसूस करना। एक और जुमला आपने बहुत सुना होगा, जिस जुमले की वजह से नॉन मुस्लिम नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी कुरान की उन महफिलों में नहीं आते जिनमें कुरान की बातें समझ आती है। और वो जुमला क्या है कि इस कुरान को पढ़कर बड़ा डर लगता है। ना पढ़ो ना डरो, सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो अमल करना पड़ेगा, ना पढ़ो ना अमल करो। और कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें तो बस जी आग और जहन्नम की ही बातें हैं, पता नहीं क्यों ये कुरान इतना डराता, होगा देखी जाएगी, ये है वो है। तो आप इस पे शर्मिंदा ना हो, कहें यस ये कुरान आया है डराने के लिए। आपने पिछले पारे में 29वां पारा जो साथ चल रहा है पूरा पारा इंतजार अंबिया कराम इसी जहन्नुम के खौफ को दिलाने के लिए 1 लाख से जायद नबी आए, और हर बंदा यही कहे तो फिर क्या होगा। और याद रखिए कि दुनिया के बारे में एक राइटर है इंग्लिश के, मैं नाम नहीं देती, उन्होंने एक बुक लिखी थी 25th आवर, और उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि दुनिया का असल वक्त गुजर चुका है और सिर्फ अब आखिरी घंटा चल रहा है। अब ये तो उस शख्स की किताब और उसकी बात है ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया का जो वक्त गुजर गया उसकी और जो बाकी है उसकी मिसाल क्या है। दो तीन मिसालें में हदीस से मिलती हैं, फरमाया कि दिन का सारा हिस्सा शुरू से लेके असर तक गुजर चुका है और असर से मगरिब का वक्त रह गया। फिर आपने फरमाया कि मेरे और कियामत के बीच में और कुछ नहीं है, यानी मैं आखिरी नबी हूँ। और आप देखिए आपको दुनिया से गए हुए भी तकरीबन 1500 साल हो रहे हैं, इतनी दुनिया करीब है। आपने फरमाया कि कपड़ा कोई काटे नी का तार रह गया है, अक्सर उसको दुकानदार झटके से फाड़ता है, यानी कियामत इतनी करीब है कि बस एक झटके से चली जाएगी। अल्लाह ने आपको मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, लिया ब्लुआकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो आप और मैं कमरे इम्तिहानगाह में है, और इसमें संजीदगी के साथ चलेंगे ना तो कल बहुत खुश होंगे, फिर आप फर्स्ट भी आ सकते हैं, आप टॉपर्स में से भी हो सकते हैं, और अल्लाह ना करे गैर संजीदा हुए तो फिर हम फेलियर्स में भी जा सकते हैं। ये सब मेरे और आपके शऊर को बेदार करने के लिए है कि हम अपने आप को दिखाएं कि हम कितने संजीदा इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। जिंदगी तो बस एक ही बार मिलती है, मौज करो, बाबर ऐश कर लो, ये दुनिया दोबारा नहीं मिलनी। बार बार तो नहीं मिलती, कहते हैं मौज करो जी, कौन सा बार बार आना है, बार बार तो नहीं आना, लेकिन एक बार तो और आना है। ईट ड्रिंक बी मैरी, ये स्लोगन है आज के, और यू लो कितनों को नहीं पता था, पता लग गया, यू लिव ओनली वंस। एक सेकंड के लिए मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आपको तो मैं ऐसा कुछ ना कहूँ, अल्लाह ताला आप सबको लंबी उम्र दे, राइट अवे स्पॉन्टेनियसली अगर मेरी डेथ हो जाए, सो व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, मेरे पीछे विरसा होगा या विरासत, मेरे पीछे जिक्र खैर होगा कि जिक्र बद, मेरा सदका जारिया है कि मेरा सदका शर है, मेरे पीछे 1 लाख छोड़ जाऊं या मैं 10 लाख छोड़ जाऊं, एक ही बात है। माले मुफ्त दिले पे रहम, फिर नसर मिन अल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद और उसकी फतह किन मुसलमानों के साथ मशरूत है कि जो हर मसले से ऊपर बड़ा मसला फिक्र आखरत को बना ले। ये जो आप पढ़ते हैं ना कि सहाबा की इतनी मदद की जाती थी और उनके लिए अल्लाह ताला फरिश्ते भी भेज देता था, उसकी वजह पता क्या थी, कि सहाबा का सबसे बड़ा मसला फिक्र आखरत था। हमें इल्मे आखरत है, उसको फिक्र आखरत में डालिए। आप किचन में काम कर रही हैं और आपका बेटा शावर में गया, आपके सामने एकदम आवाज देता है, मामा हॉट वाटर आ रहा है, बॉइलिंग वाटर आ रहा है, एकदम आपको रिजेंटमेंट तो होगी, आपको घबराहट तो तभी होगी, आप कुछ ना कुछ उसकी मदद करेंगी। एक तो ये है, और दूसरी सूरत है कि आप अपनी रूटीन के मुताबिक शावर के नीचे खड़ी हैं, आप टैप खोल दी और आपके सर के ऊपर उबलता हुआ पानी पड़ा। क्या ये दोनों एक्सपीरियंस बराबर होंगे? बंदे की जब अपनी जान पे पड़ती है ना फिर उसको पता चलता है। तो ये जो पहली सूरत है ना, ये इल्मे आखरत है। आप रोज खबरें सुनते हैं, इतने मुसलमान मर रहे हैं, उधर जुल्म है, उधर सिलसिला आ गया, उधर गोलियां चल रही हैं, उधर सैलाब आ गया, ये इल्म है, ये न्यूज़ है, लेकिन जब बंदा खुद उससे गुजरता है फिर लग पता जाता है। फिर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको बहुत मज़े मज़े की भी बातें बता सकती हूँ, मैंने देखा है कि लोग खुश होते हैं ऐसी बातें, और ऐसे स्पीकर्स की बातें उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, फन भी है, मौज भी कर लें, हाथ में आप कॉफ़ी भी पकड़ लें, टांगे भी ऊपर करके बैठ जाएं, लेकिन कुरान क्या है? आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़कर आएं, वमा हुआ बिल हज़ल, सूरत तारिक के आखिरी जुमले पे गौर करें, ये खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये हंसी नहीं है, टेक इट सीरियस। इस कुरान ने बदला था सहाबा कराम के दिलों को, हम कैसा कुरान पढ़ के बैठे हैं और कैसा पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे, तो इंशाल्लाह हमने इसमें अपने लिए नसीहत लेनी है। और आखिरी चीज़ जिसके बाद हम तर्जमे पे आ जाएंगे वो है ईमान की ताकत। क्यों चाहिए ईमान की ताकत? फिक्रे दुनिया से ज्यादा फिक्रे आखरत पैदा करने के लिए। आज आपने इंशाल्लाह यहाँ से बेगम होके जाना है, बच्चे अल्लाह के सुपुर्द, बेटियों के रिश्ते अल्लाह के सुपुर्द, उनके घर बसते या नहीं बसते अल्लाह के सुपुर्द। मियाँ साहब की जॉब है कि नहीं अल्लाह के सुपुर्द। कोई बीमार, कोई परेशान, कोई कागज़, कोई पेपर, 101 यही मसले हैं हमारे। सबको कहिए अल्लाह तेरे सुपुर्द। बस मुझे एक फिक्र लग गई है कि तू मुझे बता कि मैं तेरी नज़रों में ठीक हूँ। मेरा कोई अमल ऐसा तो नहीं जो मुझे कल तेरे सामने शर्मसार कर दे, और अल्लाह करे कि आज ऐसा हो। आगे चलते हैं। अब हमारा आज का जो टारगेट है सूरत फजर से सूरत नास तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फजर 89 नंबर की सूरा है, 30 आयात हैं। कुरान पाक में तीन नमाजों के नाम पर सूरतें उसमें से एक है। इसका थीम क्या है कि अपने रब को भूल जाने वाले की फितरत मसख हो जाती है, और जो फितरत पे कायम रहें अल्लाह उनको मौत के वक़्त खुशखबरियाँ देता है, जो इस सूरत के एंड पे हम देखेंगे। तीन नमाजें कौन सी हैं जिनके नामों पे सूरतें? सूरत फजर आज मेरे सामने है, अभी थोड़ी देर में सूरत दुहा आ जाएगी, और भी सूरत असर। तो आज हम नमाजों के नामों पे सूरतों में से पहली सूरत पे हैं। सूरत फजर 1 से 30, दुनिया परस्त कौमों की तबाही, ये है इसका थीम। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फजर वल लयाली नश्र व शफ़ी वल वत्र वल लैली इज़ा यस्र। कसम है फजर की और 10 रातों की, जुफ्त और ताक की, ये ज़िलहज की 10 दिनों की बात है, और रात की जबकि वो चलने लगे, क्या इनमें अक्लमंद के वास्ते काफ़ी कसम है? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, सतूनों वाले इरम के साथ, जिनकी मानिंद कोई कौम मुल्कों में पैदा ना की गई, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे, और फिरौन के साथ जो मेखों वाला था। इन सबों ने शहरों में सर उठा रखा था, यानी सरकशी करते थे, और बहुत फसाद मचा रखा था। आखिर तेरे रब ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया, यकीनन तेरा रब घात में है। महसूस करें, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। इंसान का हाल यह है कि जब इसे इसका रब आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है तो कहने लगता है मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया, और जब वो उसको आजमाता है और इसकी रोजी तंग कर देता है तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की और जलील किया। नौसबिल्ला। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि बात यह है कि तुम ही लोग यतीमों की इज्जत नहीं करते, और मिसकीनों को खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मुर्दों की मीरास समेट समेट कर खाते हो। हर एक वो इस बात पे गौर करे जिसने बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया, वो चचा जो भतीजों की विरासत खा गए, या कोई और माल को जी भर कर अजीज रखते हो। यकीनन जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, और तेरा रब खुदा जाएगा, और फरिश्ते सफ़े बांध कर आ जाएंगे, और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी उस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज उसके समझने का फायदा कहाँ। वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ पहले से सामान किया होता, बस आज अल्लाह के अजाबों जैसा अजाब किसी का ना होगा, और ना उसकी कैदो बंद जैसी किसी की कैदो बंद होगी। महसूस करें, अल्लाह फरमा रहा है तो ये कितनी शदीद होगी, इसको इमेजिन करें कि जैसा मैं बांधूंगा किसी को रस्सियों से, क्योंकि सरकश थे, खुले फिरते थे, आज मैं बांधूंगा। लेकिन इसके बरक्स एक वो फितरत पे कायम इंसान जिसने अपनी फितरत को मसख ना होने दिया, उसका हाल क्या होगा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जी इला रब्बिकि रादियतम मर्दिया। ऐ इत्मीनान वाली रूह, तो अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह के तो इससे राजी और वो तुझसे खुश। बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में चली जा। पहले तो अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस इंजाम से दो चार करना। हम क्या दूसरे भी सुन लें कि हमारे रब ने हमारे साथ ये मामला किया। तारीख में और सहाबा कराम की ज़िंदगियों में कुछ मिसालें ऐसी मिलती हैं कि मौत के करीब जब थे वो, तो बाहर दूसरे लोगों ने भी ये आवाज़ें सुनी थी। ये किस चीज़ की अलामत है? ज़रा सा इस सूरत पे गौर व फिक्र करिए, और आप और मैं अपना जायज़ा लेते हैं कि क्या मैं इस दुनिया में आकर हकीकत में मुतमईन हूँ। आप देखिए कि इस पूरी सूरत में पहले फजर की बातें हुई, फिर दो किरदार दिए। एक वो है कि जिसको नेमत मिले तो भूल जाता है, और गम मिले तो डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि आप देखिए कि दुनिया दो ही तरह की है, कभी आप पाते हैं कभी खोते हैं, सी सॉ, कभी आप ऊपर कभी वो। ये जो फोर सीजन हैं, कभी रातें लंबी कभी दिन छोटे, ये आपको अल्लाह ने फितरत की तरतीब बताई है। हमेशा बंदा खुश नहीं रह सकता, अगर ऐसा हो ना तो फिरौन बन जाए। रिवायात से पता चलता है कि फिरौन की इतनी लंबी उम्र थी, कई सौ साल थी, और एक दफ़ा भी उसको सर दर्द नहीं हुआ। अगर होता तो उसको पता लग जाता कि मेरे भी ऊपर कोई ज़ात है जो मुझे बीमार कर सकती है। हमेशा ही खुश होते हैं, कभी कभी सैड होते हैं, हमेशा सेहतमंद होते हैं, कभी बीमारी आती है तो अपने लिए अमल की बात लिखें। थोड़ी दिला नहीं होना, एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना। हमारा हाल है कि रोज़ खाएं और कभी एक वक्त खाएं क्या, बस ज़रा सा फ्रेश ना मिले, हम कहते हैं खाए ही नहीं, मिले ही कुछ है ही नहीं कुछ पहनने को, नज़र कमज़ोर है। फिर मियाँ ने क्या, ये नहीं कहना कि आपका ब्रेन ठीक है, और क्या कहें वो बेचारे, नज़र ख़राब है डॉक्टर पे लेके जाऊं कि दिमाग ख़राब है। यानी नेमतों की नाकदरी, इससे बचना है। नफ्स मुतमईन कब बनता है बंदा? मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और मिल के छिन गया 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। रदी तो बिल्लाही रब्बन, ए अल्लाह जो आपने दिया तेरा शुक्र। और यकीन करें ये वो अंदर का की पॉइंट है जिसके बाद अल्लाह आपको अपने काम का बनाता है। मेरे आपके लिए नुक्ता क्या है कि हमने अपने आप को नफ्से मुतमईन बनाना है। कई दफ़ा आपकी सोच और होगी, अल्लाह कुछ और कर देगा। पीछे हम पढ़कर आए हैं कि रातों के टूटने से हज़रत अली ने अल्लाह को पहचाना था। तो आज से अपने लिए एक गोल सेट कीजिए। है मुश्किल, मुझे पता है, याद रखिए दुश्मन के जिहाद से भी ज़्यादा मुश्किल अपने नफ्स का जिहाद है। और गोल आपने क्या लेना है कि मैंने बोलना नहीं। और पता क्या बात है, दूसरों को नहीं पता चलता अगर बोले ना हम, बोलना नहीं है, फौरन किसी चीज़ पे रिएक्शन शो नहीं करना। और याद रखिए कि चुप रहना सीखो ताकि तुम फरिश्तों की सरगोशियों को सुन सको, अपनी कुव्वतों को अमल में लाओ ताकि अल्लाह की मदद के मुस्तहिक ठहरो। ये पते की बात है, हम इतना बोलते हैं, हमारे फरिश्ते भी क्या कहते होंगे, कभी सोचा आपने? किरामन कातिबीन, हम उनको हर वक्त मसरूफ रखते हैं। खामोश रहिए, दुख आ गया सब्र, खुशी आई तहम्मुल। ये जो हाय हुर्रा नाचना कूदना और ये हो गया वो गया, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। सहाबा कराम की बदर में मदद क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। जब बंदा अल्लाह के लिए निकलता है ना तो अल्लाह बाकी काम वो करता है। आप खड़े होते हैं ना, एक अल्लाह ज़ीरो लगाता है, एक आप 10 हो जाते हैं, आप फिर खड़े ही रहते हैं, फिर अल्लाह एक और ज़ीरो लगाता है, ज़ीरो बढ़ते जाते हैं, आप 1 से 10 से 100 से 1000 से 1,000,000 गुना बड़े हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको ज़ीरो लगा दी। वो तो आपको जो भी दे देगा उसकी शान के मुताबिक तो ज़ीरो है। तो अपना काम कीजिए। जो आज हम हाथ रख के बैठे हैं ना मुसलमान, कि जो होगा देखी जाएगी, अच्छा अल्लाह कर देगा, ये होगा वो होगा, ये एस्केपिज्म है। अल्लाह करता है मगर किन के लिए, जो खुद पहले इसको डिजर्व करते हैं। फिर एक और बात लिख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए, और वो क्या है कि जिस दिल में बंदों की मोहब्बत ना हो वो अल्लाह की मोहब्बत से भी खाली होगा। मुझे तो इस्लाम सीख कर कुरान पढ़ कर यही समझ आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन मोहब्बत करता भी है और किया भी जाता है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में हैं, ये हो नहीं सकता कि बंदे आपसे मोहब्बत ना करें। लेकिन हमारा मसला पता क्या है, अंदर कुछ है, फुल ऑफ माई सेल्फ, आई एम, मैं, माइन, मुझे, मेरी, ये मैं निकाल दें, आपको सब लोग अपने से अच्छे लगेंगे। और ज़िंदगी में ना अपने आप को खुश रखने का एक ही तरीका है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझें। ये हमारी जितनी भी अखलाकी कमज़ोरी है ना, इसके बीच में आप नोट कर लें बेशक, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मेरे साथ ये किया, मुझे ये दिया, मुझे पूछा ही नहीं। आप इसको ज़रा निकालें, और इसको निकालने का तरीका पता क्या है कि आप लोगों को अपने से अच्छा समझें। क्योंकि लोगों को हकीर जानना असल में अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझना होता है। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि लोगों को हकीर मत समझो वरना तुम लोगों के खालिक की नज़र में हकीर हो जाओगे। ये अल्लाह की सुन्नत है, जो सुनाना चाहता है अल्लाह फिर उसको क़यामत के दिन सुनाएगा, जो बड़ा बनना चाहेगा अल्लाह उसको छोटा करेगा। और अल्लाह करे कि हम अपने बारे में इस ख्याल से निकल जाएं कि हम सबसे अच्छे हैं। फेथ इन एक्शन क्या था? फजर का वक्त बाबरकत है, इस वक्त कुरान को पढ़ना अपना मामूल बनाना है, دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور کامیابیاں پانے کے لیے تہجد اور فجر میں اللہ سے فریاد کرنی ہے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کے میراث کو یعنی انہیریٹنس کے مال کو دھوکے یا ہوشیاری سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، مال کی محبت میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہے، اپنے پیچھے ڈھیروں مال چھوڑ کر جانے کی بجائے اپنا مال آگے بھیجنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ جہاں بندے کا مال ہوتا ہے نا وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ پتہ آپ گھر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آپ کا سٹف ہوتا ہے، جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، ایک آدھ دن اپراہٹ ہوتی ہے پھر آپ کو لگ جاتا ہے۔ کسی نے کہا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، تو اس نے کہا اپنی من پسند چیزیں دینی شروع کر دو آگے، جہاں چیزیں جائیں گی تمہارا وہاں جانے کو دل کرے گا۔ اور اگر آپ پلس 40 ہیں تو پھر ایک جملہ آپ کے لیے کہ یہ عمر آپ مال کمانے کی نہیں، نیکیاں کمانے کی، کیونکہ آپ 50% سے اوپر چلے گئے۔ 35 سے اوپر ہیں تو پھر بھی یہی تھا، میں نے تو احتیاطاً 5 سال اوپر کر دی ہے۔ اگر 45-40s میں آنے کے بعد بھی میرے دل سے مال 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 پیسہ پیسہ نہیں نکلا تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ فکر آخرت ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ، 3 نسلوں تک کا ہمارا رزق موجود ہے، ہمارے پاس اگر اللہ میں 50-60-70 سال کی بھی عمر دے دے تو کپڑے موجود ہیں، 2-3 مہینے کا کھانا ہماری پینٹریز فریزر اور گھروں میں موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے تو کہا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہی بہت ہے، رزق ہے، بیوی ہے، شکر والی زبان ہے، شکر والا دل ہے تو وہ بچ ہے۔ تو اس پہ بھی غور کیجئے۔ یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں اکثر سوچتی ہوں قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ آپ کا کوئی ساتھی 100ویں درجے پہ پہنچ گیا، ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ، پہ اور آپ مال کا ڈھیر تلوانے کھڑے ہوئے وہاں، کیونکہ آپ نے دنیا کا مال کمایا، اس نے فکر آخرت کو سامنے رکھا۔ پھر یاد رکھیے کہ اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ مال برا، تو لکھ لیں کہ مال برا نہیں، اس کا حصول اور تقسیم، اس میں غلطیوں سے بچنا۔ دنیا میں راضی برضا والوں کا دل موت کے وقت مطمئن ہوگا، تو لہٰذا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا۔ جس وقت اب آپ کا کہیں دل ٹوٹے، کوئی آپ سے ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے بیہیو کرے، آپ نے اس وقت کہنا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔